समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। अगले आधे घंटे में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या है उनके पास आज खास जानकारी। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हम नजर डालेंगे और कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज है पुण्यतिथि या आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा।
नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। यस, सो वी ब्रिंग यू एन अमलगमेशन ऑफ न्यू स्टोरीज एंड ऑफ कोर्स सिंस द नेम इज परिक्रमा सो वील बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ द शो एंड वील गो टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव। और बड़ी मशक्कत करते हैं देश के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स, बिकॉज बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं विशाल जो न्यूज बुलेटिन का हिस्सा नहीं बन पाती, लाइक सॉफ्ट स्टोरीज, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रिलेटेड टू कल्चर, लेकिन दे आर इनडीड वर्थ शेयरिंग विद द लार्जर ऑडियंस, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर इन परिक्रमा ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दैट इन दिस हाफ एन आवर न्यूज मैगजीन। लेट्स स्टार्ट द शो विशाल विद द न्यूज हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन टू अनाउंस पोल शेड्यूल फॉर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन अ शॉर्ट व्हाइल।
गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया, कहा इससे अंतर्राष्ट्रीय जांच व्यवस्था में भारत के नए युग की शुरुआत होगी।
At least 53 people killed after a 7.1 magnitude earthquake strikes Nepal, Tibet border this morning.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से HMPV वायरस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया, कहा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं।
Rescue operation underway for trapped workers in a coal mine in Assam.
और बैडमिंटन में कुआलालंपुर में महिला डबल्स में भारत की ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में पहुंची।
And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the important developments that take place at the national or global level. And we all know, Vishal, that the big story coming up is, of course, related to the Mahakumbh 2025. And Prayagraj, which is the epicenter of Mahakumbh, is a city steeped in history and spirituality. The city's significance as a pilgrimage site, aptly named Tirthraj, or the king of pilgrimage sites, is well documented in ancient texts and travelogues as well. The Chinese traveler Xuan Zang, who visited India in the 7th century, described Prayagraj as a region of immense natural beauty, prosperity, and cultural depth. His observations about the Triveni Sangam and the rituals performed there resonate with the spiritual fervor of Mahakumbh. His writings highlight the Triveni Sangam as a meeting point of faith and community. He described the grand festivals held in Prayagraj, attended by over 5 lakh people then, including rulers and wealthy merchants who bathed in the sacred waters and donated generously. Aur us zamane ke 5 lakh ab badhkar ke almost 50 crore ho gaye hain, because a gathering of 40 crore people is expected this year.
Ji Saira, Tirthraj Prayagraj mein Mahakumbh ka aayojan, Mahakumbh jo hai Saira ki ye 144 saal baad महाकुंभ का अवसर आता है, जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो कुंभ लगता है वो महाकुंभ कहलाता है। और महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित कराने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। ब्रांड यूपी विजन के साथ इस आयोजन को जोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी धरोहर का उपयोग विदेशी निवेश आकर्षित करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कर रही है। राज्य सरकार की इस सक्रिय पहल से उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की प्रतिष्ठा एक आध्यात्मिक और नवाचार उन्मुख देश के रूप में बढ़ने की उम्मीद है।
Yes, indeed, Vishal, and in fact, the success of the last Kumbh Mela in Prayagraj transcended its spiritual and cultural significance, garnering recognition and accolades on various fronts. The event was not only a testament to the devotion of millions, but also showcasing organizational excellence and global appreciation. The last Kumbh Mela was successful in attracting praises from both the governments and also the ambassadors of various countries. Not only that, it set 3 Guinness World Records and won accolades by heads of missions of 70 countries.
Mahakumbh is baar kai vishw record banane ke liye bhi taiyar hai. Mela pradhikaran ne vibhinn shreniyon mein 4 alag alag vishw record banane ki yojana banayi hai. Mahakumbh ke dauran record sankhya mein shraddhaluon ke Prayagraj pahunchne ki sambhavna hai. Mana ja raha hai ki pure कुंभ की महाकुंभ की अवधि के दौरान तकरीबन 40 करोड़ लोग बाग वहां पहुंच सकते हैं और इसके अलावा नेत्र परीक्षण और चश्मा वितरण के लिए भी विश्व रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है. पहली बार 5 लाख लोगों के नेत्र परीक्षण और 3 लाख चश्मों के वितरण का आयोजन एक ही स्थान पर किया जाएगा. इस उद्देश्य के लिए सेक्टर 5 नाग वासुकी के पास करीब 10 एकड़ के स्थान में भव्य नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया है. पिछली बार जब नेत्रकुंभ हुआ था तो उस नेत्रकुंभ ने भी अपनी उपलब्धियां हासिल की थी और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसने अपना स्थान बनाया था. इस वर्ष का जो नेत्रकुंभ है महाकुंभ के दौरान वो भी ऊंचे मानक स्थापित करेगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान बनाने की संभावना है.
वाओ, कंप्लीट, वन कैन टोटली बी अवर्ड बाय दीस फिगर्स, इजंट इट? एंड वेल, विद द एम ऑफ पोजीशनिंग उत्तर प्रदेश एज अ प्रीमियर ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, द स्टेट गवर्नमेंट इज शोकेसिंग महाकुंभ 2025 at prestigious international tourism trade fairs in Madrid, in Berlin, and the international tourism trade fair scheduled for January 24th to 28th, and also the ITB Berlin fair from March 4 to 6, 2025 will host thematic pavilions dedicated to Mahakumbh and Uttar Pradesh cultural legacy. These 40 square meter pavilions will encapsulate the essence of the state's heritage and invite global tourists to witness the grandeur of the world's largest religious gathering.
जी, महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि ये एक जीवंत धरोहर है जो पीढ़ियों को साझा विश्वासों और परंपराओं के माध्यम से जोड़ता है. ये एक ऐसा अनुभव है जो न केवल तीर्थ यात्रियों को बल्कि उन दर्शकों को भी बहुत कुछ उनके अंदर बदलाव लाता है जो सामूहिक आस्था की शक्ति का साक्षी बनते हैं. सदियों से प्रयागराज ने दुनिया भर से विद्वानों, यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित किया है. महाकुंभ 2025 इस ऐतिहासिक संबंध को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है. ये विराट आयोजन दुनिया को शांति, सामंजस्य और सह अस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों को फिर से खोजने का निमंत्रण दे रहा है. महाकुंभ अप्रतिम उदाहरण है सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का जो दुनिया को स्वयं की खोज यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित भी करता है. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानते हैं आज उनके पास क्या विशेष जानकारी है.
एंड बिफोर इन फैक्ट विशाल, वी गो टू आवर कॉरेस्पोंडेंट्स. हियर इज द लेटेस्ट न्यूज फॉर दिल्ली इलेक्शंस. वेल, पोलिंग फॉर दिल्ली असेंबली विल बी हेल्ड ऑन 5th ऑफ फरवरी एंड काउंटिंग विल बी डन ऑन द 8th ऑफ नेक्स्ट मंथ. द इलेक्शन कमीशन टुडे अनाउंस द पोल शेड्यूल फॉर द 70 मेंबर दिल्ली असेंबली इलेक्शंस. एंड ब्रीफिंग द मीडिया इन न्यू दिल्ली टुडे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सेड दैट द नोटिफिकेशन विल बी इशूड on 10th and the last date of nomination will be the 17th of this month. Well, that was the latest regarding Delhi Assembly. And now, as you said, ki hum log apne desh ki parikrama pe nikalte hain. And is silsile ki shuruaat aaj sabse pehle hum log kar rahe hain bahut hi interesting story se. Well, the Grameen Bharat Mahotsav that is currently going on at Bharat Mandapam in New Delhi, it is showcasing the entrepreneurial spirit and rich cultural heritage of rural India. The 6-day Mahotsav revolves around the theme Building a Resilient Rural India for a Viksit Bharat 2047, and the motto is Gaon Badhe to Desh Badhe. Well, Prime Minister Modi inaugurated the event, which features a diverse array of unique products from across the country. We have a report.
The Mahotsav is showcasing India's rich cultural heritage through vibrant performances and exhibitions. The objective of this event includes promoting economic stability and financial security among rural populations with a special focus on Northeast India. Various exquisite products have been the highlight of this event, ranging from hand-spun fabric to homemade pickles and jams. While utensils made from coconut shells and a live exhibition counter has also caught the people's eye. The Mahotsav aims at enhancing rural infrastructure, creating self-reliant economies, and fostering innovation within rural communities. The event will run till the 9th of this month. Adarsh for Parikrama, Akashwani, New Delhi.
मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन स्थलों की झलक अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी देखने को मिलेगी। यहां प्रदेश की उपलब्धियों की झलक भी नजर आएगी। जानकारी के साथ हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा।
आर्ट ऑफ लिविंग के बंगलुरु मुख्य आश्रम में 9 से 12 जनवरी तक होने वाले प्रदेश महोत्सव में मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर से आने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के अतिथियों को राज्य की परंपराओं, कला, संगीत और खूबसूरत पर्यटन स्थलों से रूबरू कराना है। महोत्सव में मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी देने के लिए खास सत्र आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव में प्रदेश की लोक कला, पारंपरिक व्यंजन, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। निवेश के लिए अवसरों पर भी यहां बातचीत की जाएगी। यह कार्यक्रम न केवल मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देगा बल्कि प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने में भी मददगार बनेगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। पर्यटकों को राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से जोड़ने के लिए कार्यक्रम के दौरान उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर समूह, ओरछा का इतिहास, पचमढ़ी की पहाड़ियां और सांची के स्तूप जैसी धरोहरों के बारे में आगंतुकों को 360 डिग्री यानी 360 डिग्री वर्चुअल अनुभव भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को भी यहाँ खास तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
And now in our journey, we head towards the state of Odisha, where the 77th edition of Dhanu Yatra, which is the world's largest open-air theater, it began with great enthusiasm in Bargarh town of Odisha. The 11-day grand cultural festival celebrates the story of Lord Krishna and King Kans, and it will continue till 13th of January, captivating audiences with its vibrant performances and elaborate settings. This year, the Odisha government has enhanced the grant for Dhanu Yatra to 1.5 crore rupees, underscoring its cultural significance. Culture Minister Suryavanshi Suraj announced that 170 leading artists participating in the Yatra will receive cash prizes of 10,000 each as part of the government's initiative to honor their contributions. Very interesting story here. Let's hear more from our correspondent.
The 11th festival opens with a spectacular ceremony, marking the commencement of King Kansa's rule over Mathura. Bargarh is playing the role of Mathura while Ambapali transformed into Gopapura, and the Jira River symbolized the sacred Yamuna. King Kansa's Rangamhal has been meticulously recreated at the Lokmandap field, and his Darbar has extended to the streets of Bargarh, where he has been engaging with the public and imposing his royal edicts in a blend of theatricality and tradition. The Dhanu Yatra unfolds across 22 stages spread over a 7-kilometer radius. Key scenes of Krishna Lila is being enacted daily at Kansa Darbar, Rangamahal and Nanda Darbar. Walls across Bargarh have been adorned with murals depicting the vibrant characters and stories of Dhanu Yatra, immersing the entire town in the festive spirit. More than 150 artists are performing in Mathura and Gopapura, while over 4,000 artists from 170 cultural troupes will participate in events at the Rajdarbar and Rangmahal during the festival. People from nearby districts and neighboring Chhattisgarh visit Bargarh to witness the cultural extravaganza. In addition to the performances, the festival features Meena Bazaar, a handloom expo, a trade fair and Palisri Mela, all of which attract large crowds. Adding to the grandeur, efforts are underway to secure UNESCO recognition for Dhanu Yatra. An expert committee has been formed to oversee this endeavor, and a dedicated website is being developed to provide comprehensive information about the festival. As the town of Bargarh transforms into a mythical wonderland, visitors can experience the unique blend of tradition, art, and storytelling that has made Dhanu Yatra a cherished festival. The festivities will continue until January 13, offering a mesmerizing glimpse into the grandeur of Odia culture and history. With Tapan Maharana, this is Smriti Rekha Taraniya for Parikrama from Cuttack.
और बात उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले वार्षिकोत्सव की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। द्वादशी महोत्सव के तौर पर 11 जनवरी को इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलीला के अभिषेक से करेंगे। एक रिपोर्ट।
अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक वर्ष पूरा होने पर 11 जनवरी से 13 जनवरी तक द्वादशी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जनवरी को दिन में 11 बजे गर्भगृह में रामलला का अभिषेक करेंगे। उसके बाद अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। इसी दिन सोनू निगम, शंकर महादेवन और मालिनी अवस्थी समेत कई मशहूर कलाकारों का गाया भजन भी रिलीज किया जाएगा। महोत्सव में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के 70 प्रमुख संतों और धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या के साधु संतों में प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को लेकर उत्साह है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने कहा कि यह आयोजन सभी संतों को आनंदित करेगा।
जिस प्रकार से श्री राम मंदिर को भारत का एक सगुन मानते हैं कि लोक मंगल से राष्ट्र मंगल की जिस यात्रा को हम प्रारंभ कर रहे हैं उसका जो प्रारंभीकरण है उसको श्री राम जन्मभूमि के उस मंदिर से प्रारंभ हो रही है, तो हम उसके वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान, यज्ञ और कथा, प्रवचन और गायन, जन्मोत्सव इत्यादि ये कार्यक्रम मनाकर हम वार्षिक उत्सव के उस आनंद से अभिभूत होने वाले हैं, जिसमें भारत के सभी साधु, महात्मा, संत और भक्तजन आहूत किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग आकर के उस वार्षिक उत्सव का आनंद लेंगे, जहां इतनी लंबे संघर्षों के बाद एक भारतीय परंपरा और संस्कृति के अपना के रूप में जहां से ये पीठिका प्रारंभ हो रही है उसके उत्सव को दिव्यता और भव्यता के साथ हमारा संपूर्ण समाज 11, 12 और 13 जनवरी को मनाने के लिए तैयार है।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो लोग शामिल नहीं हो सके थे वो द्वादशी महोत्सव में शामिल होना चाहते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होने के लिए अयोध्या आएंगे, लिहाजा बुनियादी सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक की प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। अयोध्या मंडल के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रतिष्ठा द्वादशी पर विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें तकनीक और सुरक्षा बल दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
अयोध्या की संवेदनशीलता के दृष्टिगत हम लोगों ने एक विशेष सुरक्षा योजना हमारी निर्मित है, उसको समय समय पर रिहर्सल भी किया जाता है, उसमें आवश्यक व्यवस्था की जाती है और इसमें तकनीक और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको एक बेटर कॉम्बो के साथ में हम लोग इसको लगा करके इसकी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखेंगे।
द्वादशी महोत्सव को लेकर सभी जरूरी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। वहीं कथा, प्रवचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों जैसे विविध आयोजनों के जरिए 11 जनवरी से 13 जनवरी तक राम भक्ति में अयोध्या सराबोर नजर आएगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी लखनऊ से ओम अवस्थी।
और अब खेल जगत की जानकारी के साथ हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना।
धन्यवाद विशाल। आइए अब सबसे पहले अपने सुनने वालों को हम सीधा मलेशिया लिए चलते हैं, जहां पे इस समय मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जा रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज थाईलैंड के ऑर्निचा और सुकिता सोवाचाई की जोड़ी को लगातार गेम में 21-10 और 21-10 से पराजित कर अगले दौर में जगह बनाई। आज ही पुरुष सिंगल्स में प्रियांशु रजावत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय दिखाई देंगे खेलते हुए और महिला सिंगल्स में अनुपमा उपाध्याय और आकर्षि कश्यप अपनी चुनौती पेश करेंगी। बैडमिंटन की खबर को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इस साल 14 जनवरी से योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन भारत कर रहा है। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु की अगुवाई में 21 सदस्यीय भारतीय दल इस टूर्नामेंट में अपनी चुनौती पेश करेगा और इसके अलावा विशाल ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन, एनके यंग और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी शी यूकी भी इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे। एथलेटिक्स की भी बात कर लेते हैं। भारत इस साल के भाला फेंक की एक शीर्ष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया के टॉप के 10 खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। उधर चंडीगढ़ में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की वार्षिक आम बैठक में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और गोला फेंक के पूर्व खिलाड़ी बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। बहरहाल खेलों की दुनिया से आज सिर्फ अब तक के लिए इतना ही। वापिस चलते हैं अब विशाल और सायरा के पास।
थैंक्स नवीन फॉर दैट वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। एंड नाउ मूविंग ahead is some business news. Well, benchmark domestic equity indices today ended in positive territory, supported by oil and gas, energy and healthcare sectors. The 30 share index at Bombay Stock Exchange Sensex gained 234 points to close at 78,199. Similarly, National Stock Exchange Nifty 50 added 92 points to settle at 23,708. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की.
This immortal verse of the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, was the opening of the programs of Azad Hind Radio. After setting up a Free India Center in Berlin, Netaji Subhash Chandra Bose started Azad Hind Radio as part of Germany's radio service, which first aired on the 7th of January 1942.
The programs were meant to show solidarity with Indians living abroad, as well as those living in the subcontinent. They included news bulletins transmitted in English, Gujarati, Marathi, Bengali, Pashto, तमिल, पर्शियन एंड तेलुगु.
हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो. आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए. न मालूम कब बिगुल बज उठे. असंगठित और कमजोर रहना पाप है. गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है. अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए. हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है. हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा. आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे. तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा.
Initially based in Germany, its headquarters were shifted to Singapore. Broadcasting from Berlin, Bose celebrated the wave of Japanese victories over British territories and passionately spoke about India's Quit India movement.
Azad Hind Radio aimed to counter the broadcasts of radio from allied nations during World War II.
The 7th of January is also the birth anniversary of freedom fighter and social reformer Gyananjan Niyogi. Born in 1891, Gyananjan was strongly influenced by Brahmo ideals and he tried to implement them in life. He was attracted towards the freedom movement when Bengal was partitioned in 1905.
In 1909, Gyananjan Niyogi formed the Calcutta Working Men's Institution. Apart from its educational and training activities, it organized medical assistance and carried out development work for the benefit of the poor residents living in slums. He extensively toured the rural areas of Bengal and started using the magic lantern for spreading consciousness amongst the poor and the uneducated sections of society.
In order to promote the use of indigenous materials, he used to organize the Swadeshi Mela. When Netaji Subhash Chandra Bose was the mayor of Calcutta from 1930 to 31, he requested Niyogi to organize Swadeshi campaign.
After independence, when refugees came from East Pakistan, Gyananjan Niyogi put his heart and soul into rehabilitation work. The noble soul breathed his last on the 13th of February 1956.
और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा था कि कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उन व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ है. और इस कड़ी में सबसे पहला नाम हमारे पास है अभिनेत्री, जानी मानी अभिनेत्री रीना रॉय. हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री, प्रसिद्ध अभिनेत्री. इन्होंने 1972 से 1985 तक कई फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएँ निभाई. उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए शर्मिला टैगोर के साथ 1998 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. और इनकी फिल्म जो बहुत प्रसिद्ध रही वो थी नागिन फिल्म 1976 में जो आई थी, और 1980 में आशा फिल्म आई थी और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार के लिए नामांकन भी किया गया था.
राइट, एंड वेरी फ्यू पीपल नो दैट. इनफैक्ट इवन आई डिडंट नो विशाल कि उनका असली नाम सायरा अली है, जो कि मेरी हमनाम हुई. आई डिडंट नो, आई ऑलवेज न्यू हर ऑफ कोर्स एज रीना रॉय ओनली. एंड शी मेड हर डेब्यू एज अ टीनेजर विद बी आर इशारा'स फिल्म जरूरत, बट शी गेन्ड वाइडर पॉपुलैरिटी एंड रिकॉग्निशन विद द फिल्म जैसे को तैसा एंड द रोमांस एक्शन फिल्म जख्मी. इन 1976 शी एंटर्ड द टॉप लीग आफ्टर स्टारिंग इन टू ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट्स ऑफ दैट टाइम, the action thriller Kali Charan and the horror film Nagin that you mentioned. In fact, Nagin ke baad to unki popularity bahut zyada badh gayi. Uske baad to in fact ek aur film aayi thi agar aapko yaad ho, Jaani Dushman, jisme unke usko bahut zyada saraya gaya tha, and that film itself has remained quite an iconic film. And well, in 1983 she married cricketer Mohsin Khan and then announced a sabbatical. And well, we have a song jo aur mere khayal se जब रीना रॉय का जिक्र होता है तो यही गाना जहन में अपने आप बजने लगता है.
रीना रॉय ने फिल्म फेयर का अवार्ड जीता बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए और फिल्म का नाम था अपनापन, जो 1977 में रिलीज हुई थी. और इसके बाद इनकी फिल्म एक आई 1979 में जानी दुश्मन, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुई. और आशा 1980 में, अर्पण 1983 में, आशा ज्योति 1984 में और नसीब 1981 में इनकी फिल्म आई थी. और इसके अलावा 1982 में एक रोमांटिक कॉमेडी भी थी जिसमें इन्होंने अभिनय किया था, सनम तेरी कसम. और साथ ही साथ जैसा कि सायरा ने बताया भी कि इन्होंने बाद में आगे चलकर के फिल्मों की दुनिया से दूरी बना ली और क्रिकेटर से शादी की.
दैट्स ट्रू. टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग अ वेरी फाइन एक्टर हु डाइड वेरी यंग. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इरफान खान. एंड टुडे इज हिज बर्थ एनिवर्सरी. एंड ऑफ कोर्स उनकी जो अदाकारी थी पर्दे पे, वो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये एक्टिंग है. यू नो, वो कहते नहीं है, मतलब लोगों के अंदर एक धारणा होती है कि अगर आपको फिल्मों में आना है तो बहुत ही यू नो एक ग्रीक गॉड जैसे लुक्स होना चाहिए. बट आई थिंक इरफान खान के अंदर एक अलग सी कशिश थी. ही वॉज नो वे क्लोज टू a very good looking man, but yet he was so attractive because of his whole, you can say, aura that he used to create on the celluloid through his acting.
Aur Saira inki jo abhinay tha, wo abhinay inki aankhon mein agar koi dekh le to is abhineta ki aankhon se hi ek abhinay hota tha.
Yes, absolutely. Aur sirf aankhein to thi unki bahut zyada, jise keh sakte hain ki kafi gehri, and that very very piercing eyes. Apart from that, jo unka ek nonchalant smile rehta tha hamesha, koi भी डायलॉग कहने के बाद जो बड़ी कैजुअली से जैसे स्माइल करते ना, आई थिंक ये सब उनके खासियतें थी. क्यों ना उनकी आवाज में एक डायलॉग सुना जाए.
लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं.
एंड वी आल्सो हैव अ सॉन्ग ऑफ इरफान खान, लेट्स प्ले दैट.
इरफान खान ने 1988 में सलाम बॉम्बे में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की थी और काफ़ी संघर्षों के बाद इन्हें कुछ फिल्मों में अभिनय किया इन्होंने और ब्रिटिश फिल्म द वॉरियर 2001 में इन्होंने अभिनय किया था.
यस एंड क्विकली लेट्स रिमेंबर सुप्रिया पाठक ऑन अ बर्थडे विद दिस सॉन्ग. इसके साथ दीजिए विशाल असायरा को इजाजत.
नमस्कार, नमस्कार।